तलाक के कागज माहिरा तक पहुंच चुके थे। अरमान के घर पूरा परिवार इकट्ठा बैठा हुआ था। माहिरा चुपचाप बैठी थी, सादिया भी वहां आ गई थी। अब तक सादिया सब समझ चुकी थी, रेहान का माहिरा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो अभी भी नूर के पीछे है, क्योंकि उसकी फैजान से बात हो चुकी थी। इसीलिए उसने फैसला किया घर वालों के सामने अच्छा बनने का। वो माहिरा के पास बैठी, उससे हमदर्दी दिखाने लगी। उसी बीच उसे पता चला रेहान दुबई गया है। ये सुनकर सादिया हैरान रह गई। मगर मुझे तो उनका फ़ोन नहीं आया, उसने कहा। वहीं बैठी रेहाना बेगम बोली, मेरे पास आया था फ़ोन, कोई ऑफिस का ज़रूरी काम था इसीलिए वो चला गया। कहा है टाइम मिलेगा तो खुद फ़ोन करेगा। सादिया चुप हो गई, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। रेहान का यूं अचानक दुबई जाना, कुछ तो है जो उससे छुपाया जा रहा है। वो उसी के बारे में सोचने लगी। उधर नूर बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुकी थी। वो जगह शहर से थोड़ी दूर एक शांत एरिया में बनी अकादमी थी। उनका काम काफ़ी हाई प्रोफाइल था। केवल इंडिया ही नहीं, वे दुनिया भर में कोचिंग देते थे। उनके पास अलग अलग देशों के टीचर्स थे। पूरा सिस्टम ऑनलाइन कोचिंग का था। जो लड़कियां बाहर से आती थीं, अकेली लड़कियां, उनके लिए वहीं रहने का भी इंतज़ाम था। हॉस्टल स्टाइल कमरे जहाँ खाना और रहने की पूरी सुविधा थी। उस अकेडमी की प्रिंसिपल एक अकेली औरत थी। वो उसी बिल्डिंग के एक हिस्से में रहती थी। उसके बच्चे विदेश में रहते थे और वो खुद अकेली थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और उसने उसी शौक को अपना बिजनेस बना लिया था। एरिया भी ऐसा था जहां बाहर का कोई शोर शराबा नहीं, बहुत शांत माहौल, पढ़ने और रहने के लिए बिल्कुल सही। उसने नूर का इंटरव्यू लिया। नूर को भी उससे बात करके अच्छा लगा। इंटरव्यू के बाद उसने नूर को वहीं रहने के लिए कमरा अलॉट कर दिया। नूर ने अपने अब्बा इकबाल को फ़ोन किया, उन्हें बताया कि वो ठीक है और सुरक्षित पहुंच गई है। साथ ही प्रिंसिपल से भी उनकी वीडियो कॉल पर बात करवाई, पूरा जगह दिखाया, कमरा, क्लास, माहौल, तब जाकर उनका दिल थोड़ा शांत हुआ। वैसे भी अब तक खलील ने उनका पीछा छोड़ दिया था और रेहान को पूरा यकीन हो चुका था कि नूर दुबई चली गई है। नूर ने अपना काम शुरू कर दिया था। वो खुश थी, उसे शांति मिली थी। सच पूछा जाए तो उसे सांस आई थी, क्योंकि वो हर वक्त उस आदमी की नज़रों के सामने रहती थी। अब जहाँ वो थी वहाँ सिर्फ लड़कियाँ थीं, और वे भी जो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। नूर अपने ही कमरे में ऑनलाइन कोचिंग देती और वहीं बैठकर खुद भी पढ़ाई करती। धीरे धीरे वो लॉन में भी वक्त बिताने लगी थी। उधर फैज़ान ने भी प्रिंसिपल साहिबा को फ़ोन किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने नूर को नौकरी दी, उसने कहा। फिर उसने आगे कहा, मैं आपसे मिलने आऊँगा। नूर का रिजल्ट आ चुका था और उसे लेने के लिए यूनिवर्सिटी जाना था। इकबाल को चिंता थी कि उसकी बेटी अकेले कैसे जाएगी, लेकिन नूर ने उसे भरोसा दिलाया, अकेडमी की गाड़ी है, मैं उसी से चली जाऊंगी, आप फिक्र मत करो। और फिर वो अकेडमी की गाड़ी में यूनिवर्सिटी चली गई। वहां उसने अपना सारा काम पूरा किया और वापस लौटने लगी। वापसी के रास्ते में ट्रैफिक लगा हुआ था, तभी नूर की नज़र सामने से गुजरती एक गाड़ी पर पड़ी। वो फरीद खान के घर की गाड़ी थी जिसे ड्राइवर करीम चला रहा था। नूर ने झट से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन देर हो चुकी थी, करीम की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। कुछ ही देर में ट्रैफिक खुल गया और नूर की गाड़ी आगे निकल गई। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, जैसे वो किसी अनजान डर से बचकर निकली हो। उधर करीम जब घर पहुंचा तो उसे सादिया लॉन में बैठी हुई मिली। वो पहले तो सामान्य ही था, लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में वही बात आ गई, नूर उसे ट्रैफिक में दिखी थी। वो सीधा सादिया के पास गया। मैंने नूर को आज देखा था, सादिया ने तुरंत सवाल किया। ये बात तुमने किसी को बताई है? करीम ने कहा, नहीं, किसी को नहीं, सादिया ने सख्ती से कहा। तो फिर किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें पता है ना, अगर ये बात बाहर गई तो सबका मूड खराब हो जाएगा और तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। करीम को उसकी बात सही लगी, उसने सिर हिला दिया। सादिया के चेहरे पर भले ही सख्ती थी, लेकिन अंदर से उसे एक अजीब सी राहत भी थी। रेहान जो देश से बाहर था, लेकिन नूर जहाँ पर है तो उसके लिए तसल्ली की बात। रेहान को दुबई गए 15 दिन हो चुके थे और अभी तक वो वापस नहीं आया था। सादिया पहले इसी वजह से परेशान थी, लेकिन अब नूर की मौजूदगी से उसका मन थोड़ा शांत होने लगा था। लॉन में बैठी सादिया को देख रेहाना बेगम आई। क्या हुआ, करीम क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस छुट्टी की बात कर रहा था, सादिया ने बात टाल दी। फिर रेहाना बेगम ने पूछा, रेहान का फ़ोन आया था, कब आएगा वो? सादिया ने हल्के स्वर में जवाब दिया, कह रहा था जैसे ही काम खत्म होगा आ जाएगा। रेहाना बेगम मुस्कुराई, तुम बस अपना ख्याल रखो और आने वाले बच्चे का। फिर वो थोड़ी भावुक होकर बोली, ऐसा शौहर जो ना किसी की तरफ देखा है ना किसी के बारे में सोचता है, किस्मत वालों को ही मिलता है। सादिया चुप रही। वो जानती थी कि रेहाना बेगम को अपने बेटे की असल तस्वीर का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अकेडमी में जैसे ही नूर पहुंची, उससे पहले फैजान वहां आ चुका था। वो प्रिंसिपल साहिबा से मिलकर धन्यवाद दे रहा था। अब उसका ट्रांसफर और प्रमोशन हो चुका था
और वो यहां से जा रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला, नूर अंदर दाखिल हो रही थी। दोनों आमने सामने आ गए, लेकिन फैजान ने तुरंत चेहरा मोड़ लिया। फैजान समझ गया कि अगर वो रुकता या बात करता तो शायद नूर और असहज हो जाती, इसीलिए उसने सिर्फ एक नजर देखा और आगे बढ़ गया। मगर नूर का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया था। नूर अंदर चली गई और फैजान बाहर। दोनों के बीच एक अनकही दूरी और एक अधूरी कहानी वहीं छोड़ गई। ये कैसी अधूरी कहानी जिसे पूरा होना है, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। रेहान अब तक वापस नहीं आया था और फरीद खान की परेशानी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। ऑफिस का काम बढ़ रहा था, काम रुक रहा था और वो सब कुछ अकेले संभालते संभालते थक चुका था। आखिरकार उसने वीडियो कॉल मिलाई। स्क्रीन पर रेहान का चेहरा उभरा। रेहान, ऑफिस का इतना काम पड़ा है, तुम गए हुए इतने दिन हो गए, आखिर कब वापस आओगे? फरीद खान की आवाज में साफ झुंझुलाहट थी। रेहान ने हल्की सांस भरी। डैड, बस थोड़ा सा काम बाकी है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। जल्दी? तुम हर बार यही कहते हो, यहाँ कितना नुकसान हो रहा है तुम्हें अंदाजा भी है, मैं सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर सकता। इस बार उनकी आवाज ऊंची हो गई। तभी कमरे का दरवाजा खुला और सादिया अंदर आई। कोई बात नहीं, उसने धीरे से कहा, आप उन्हें वहां काम करने दीजिए, वो ऑफिस के काम से ही गए हैं, उन्हें चैन से काम करने दीजिए। फरीद खान ने उसे घूर कर देखा। ऑफिस का इतना नुकसान हो रहा है और तुम कह रही हो फिक्र मत करो? सादिया मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही यकीन था। वो सब संभाल लेंगे, उनकी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है। फरीद खान हल्का सा हंसा। अच्छा, तो अब तुम्हें बिजनेस की भी बहुत समझ आ गई है? सादिया ने बिना रुके जवाब दिया। बिजनेस की समझ नहीं है, लेकिन रेहान को समझती हूँ। स्क्रीन के उस पार रेहान चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून भी था और सवाल भी। कुछ पल की खामोशी के बाद फरीद खान ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। सादिया बिना कुछ कहे वहां से चली गई और कॉल भी खत्म हो गई। लेकिन सच कुछ और था। सादिया को अब पता चल चुका था कि नूर इसी शहर में है, और अगर रेहान दुबई में ही रुका रहे तो शायद बहुत कुछ बिखरने से बच सकता था। उधर रेहान को नूर का कोई पता नहीं चला था, वो इंडियन एम्बेसी जाकर भी जानकारी ले चुका था। दुबई में आने वाले सभी इंडियन लोगों के बारे में उसने पता किया, लेकिन नूर का नाम कहीं भी नहीं मिला। आखिरकार रेहान वापस आ गया, लेकिन सीधे सिद्धपुर पहुंचा। वो साकेत के घर गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा साकेत की अम्मी ने खोला। जी कहिए, उन्होंने पूछा। मैं साकेत का दोस्त हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, रेहान ने कहा।
साकेत यहाँ नहीं है, वो दुबई में है, उनकी अम्मी ने जवाब दिया। रेहान चौंक गया, मगर मुझे तो वो दुबई में भी नहीं मिला। अब रेहान का गुस्सा बढ़ गया। वो सख्त आवाज में बोला, आपका बेटा मेरी महबूबा को लेकर भाग गया है, सच सच बताइए वो कहाँ है, वरना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नूर का नाम सुनते ही उनकी अम्मी भी हैरान रह गईं। तभी साकेत का वीडियो कॉल आ गया। लो, इसी वक्त इसका फोन आ गया, उठाती हूँ, उन्होंने कहा और कॉल रिसीव कर ली। अम्मी, आप क्या कर रही थीं? इतना टाइम क्यों लगा दिया फोन उठाने में? साकेत ने पूछा।